शांति। वीणा वादिनी, हंस वाहिनी, विद्या की साक्षात देवी सरस्वती आपके जीवा पर विराजमान है। आप हर की पौड़ी है। ऐसे वरदानों से स्वयं भगवान ने जिन्हें सजाया है, ऐसी हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलो दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान है। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रत्न हैं। आपका यह बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि स्वयं साकार ब्रह्मा बाप की गोद में आपका अलौकिक जन्म हुआ। मुंबई में ही रहते फिर तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाइयां पढ़ते आप बड़े हुए। मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और फाइनल ईयर की एग्जाम पूरी करके रिजल्ट आना बाकी था, लेकिन एग्जाम पूरी हुई और मधुबन में आए, जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद पहली टीचर्स ट्रेनिंग हुई, उसमें आपने भाग लिया और राजयोगा टीचर बनकर सेवा के लिए तैयार हुए। तो बाबा ने आपको देश और विदेश की धरनी में विभिन्न स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बेंगलोर, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि स्थानों पर आपने सेवाएं दी, बाबा के बच्चे निकाले, बाबा का नाम रोशन किया। तो 69 से लेके 76 तक आप इस प्रकार से सेवाएं करते रहे और 76 में जब आप मधुबन आए तो एक स्वर्णिम अवसर आपका इंतजार कर रहा था और वो स्वर्णिम अवसर था आपके मधुबन निवासी बनने का। आपको दादी ने ऑफर किया जिसको आपने सहर्ष स्वीकार किया। तो 76 से लेकर आप इस हेडक्वार्टर की धरनी पर रहकर अपनी सेवाएं देश विदेश में दे रहे हैं। आपने 75 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके बाबा का नाम देश विदेश में रोशन किया है। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं और पूरे ही साल भर में इस पांडव भवन की धरनी में जो ज्ञान योग के प्रोग्राम चलते हैं, जैसे कि बाबा के सीजन में विदेशी भाई बहने यहाँ ठहरते हैं तो उनके ज्ञान योग के प्रोग्राम, और बाबा की सीजन पूरी होने के बाद आप भारत वाले भाई बहनों की भट्टियों के प्रोग्राम, उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं। और इसके साथ साथ विशेष रूप से जो आपकी वर्तमान में सेवाएं चलती है वो है जो पालना अपने साकार मम्मा से, बाबा से और अनेक अनेक दादियों से प्राप्त की है। और अब चूंकि दादियां अव्यक्त हो गई है, दादियों की कमी आने वाले नए भाई बहनों को जो खलती है उसकी कमी आप अपनी पालना देकर सबकी पूरी करते हैं। यूं तो बहुत सारी सेवाएं हैं लेकिन हर एक का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। आपके जीवन में सदा ही सहनशीलता, धैर्यता और मधुरता की त्रिवेणी सरिता बहती रहती है और ज्ञान का एक एक पॉइंट जीवन में धारण करते हैं। तो आज उसी आधार से, अपने अनुभव के आधार से आपके सामने रखेंगे कि कैसे निश्चय, नशा और निशाना हमें साधना है। सुनते हैं दीदी से, आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी ने हम सबको 3 बार ओम शांति कहना सिखलाया, तो अभी अभ्यास पड़ गया है 3 बार ओम शांति कहना। और फिर दादी जी कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। और वास्तव में इन तीनों ही वाक्यों में बहुत कुछ सार समाया हुआ है। मैं कौन और मेरा कौन, अर्थात खुद में निश्चय, बाप में निश्चय, फिर मुझे क्या करना है, ये ड्रामा में निश्चय और साथ साथ कर्म में भी निश्चय। जो ज्ञान के मुख्य हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ज्ञान के 4 सब्जेक्ट्स, वैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ज्ञान के मुख्य 4 सब्जेक्ट्स है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान और चक्र का ज्ञान। और ये ज्ञान हम, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इसमें समा जाता है। सारे ज्ञान का निचोड़ इसी में है। और उसके लिए बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। मैं कौन, इसमें निश्चय, मेरा कौन, उसमें निश्चय, मुझे क्या करना है, कर्म में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। और उसी को उस दिन बाबा ने 4 प्रकार का निश्चय कहा, खुद में निश्चय, बाबा में निश्चय, देवी परिवार में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। ये निश्चय हमारी ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। हमारा जीवन इसी निश्चय के आधार पर आगे बढ़ रहा है, और इसमें अगर एक भी कमी है, एक निश्चय में भी कमी है, तो यह जीवन, जिसको बाबा कहते हैं स्टेबल, स्थिर, एक रस, वो नहीं हो सकेगा। अगर तीन में निश्चय, एक में नहीं या दो में नहीं, तो एक में चाहे कितना भी निश्चय हो, दो में बहुत निश्चय, पर दो में नहीं, तो भी निश्चय डामाडोल हो सकता है। तो सदा अपनी ये चेकिंग करनी है कि क्या जो बाबा मेरी सही पहचान हमें देते हैं हर मुरली में, क्या मैं उस पहचान के आधार पर अपने स्वमान में सदा स्थित रहता हूँ। हर मुरली में बाबा हमको कोई न कोई टाइटल देते हैं, तुम कौन हो, हर मुरली में आप देखेंगे तुम कौन हो, तुम होली हंस हो, तुम खुदाई की मददगार हो, तुम विश्व कल्याणकारी हो। अगर लिस्ट निकाले तुम कौन हो, तो कितनी लंबी लिस्ट निकल आएगी, निकाल सकते हैं ना, है ना लिस्ट आप हमारे पास, आपके पास, तुम कौन हो बाबा। जब चाहे साकार मूल्यों में तो बाबा टाइटल देते ही थे, लेकिन अव्यक्त मूल्यों में तो हर मुरली का पहला महावाक्य ही बच्चों के टाइटल से था। आज बाप दादा किसको देख रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, तो कितनी कितनी बातें बाबा कहते हैं। अगर वो लिस्ट भी हम निकाले कि साकार मूल्यों में, अव्यक्त मूल्यों में जो बाबा ने हमें स्वमान दिए, उन स्वमानों का हम कितना स्वरूप बने हैं, अगर इन स्वमानों का निश्चय नहीं, तो फिर नशा भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि निश्चय होगा तब नशा आएगा, और जब नशा आएगा तब तो निशाने तक पहुंचेंगे। अगर बाबा कहते हैं तुम होली हंस हो, तो मैं होली हंस हूँ नहीं हूँ, कितना परसेंट हूँ, क्योंकि होली हंस का मतलब कितना गहरा है। होली हंस, हंस कितना पवित्र होता है, बेदाग होता है, सफेद सफेद होता है, हंस मोती चुगता है, कंकड़ फेंक देता है, क्षीर लेता है, नीर फेंक देता है, मानो हंस की जो विशेषताएं हैं क्या मेरे अंदर हैं, या मैं औरों का और अपना अवगुण देखता रहता हूँ। एक है केवल अपना अवगुण देखना, दूसरों का गुण देखना, दूसरा है दूसरों का अवगुण देखना, अपना गुण देखना, है ना। हम कहते हैं चार प्रकार के लोग हैं, चार प्रकार की वृत्तियां हैं। एक वृत्ति है कि मैं तो बहुत बुरा हूँ, मेरे अंदर तो बहुत कमियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं, मैं तो कुछ भी लायक नहीं हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, है ना। कई लोग अपने बारे में ऐसे कहते हैं, मेरे अंदर तो गुण है ही नहीं, भक्ति मार्ग में तो यही कहते आए हम भगवान के आगे, मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, बस आप मुझ पर तरस खाओ, आप मुझे वो गुण दो, आप मुझे वो शक्ति दो, आप ये दो 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 दो, यही भगवान को कहते थे। लेकिन हमारे अंदर है ये समझ नहीं थी, और बाबा ने हमको हमारी समझ दी कि तुम वास्तव में कौन हो। तो जो बाबा हमें टाइटल देते हैं वो हम हैं, ये इतना बड़ा निश्चय हो, क्योंकि हम कौन हैं, हम कौन हैं। तो जैसे दादी जानकी जी इतने निश्चय से कहती थी हम कौन हैं, उतना निश्चय से हम भी कहते हैं, या कहते कई बार कहते पता ही नहीं मैं कौन हूँ, ऐसे भी है लोग, ऐसे भी लोग हैं। एक परिवार मिलने आया, अब माँ बाप तो ज्ञान में चलते थे, शुरू किया नया नए 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 आए, लेकिन उसका जो बच्चा था वो तो एकदम डिप्रेशन में था, डिप्रेशन में था, कुछ भी किसी का सुनता नहीं था बस बिल्कुल। तो उनके माता पिता ने मुझे कहा कि बहन जी इनको थोड़ा समझाओ, समझ ही नहीं आता है ये क्या सोचता है क्या चाहता है, कुछ बताता नहीं है, बहन जी आप इनको थोड़ा समझाओ। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा, आपको पता है आप कौन हैं? तो मेरा मुंह देखता रहा, मैंने कहा पता नहीं क्या कहेगा। फिर दोबारा पूछा, आपको पता है आप कौन हैं? तो अभी दूसरी बार भी जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार जब फिर मैंने पूछा, आपको पता है आप कौन हैं? तो गुस्सा आ गया और कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा कुछ तो हो तभी तो बोल रहे हो, अगर कुछ नहीं होता तो बोलता थोड़ी मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं बोलेगा क्या, कुछ तो हो इसलिए बोल तो रहे हो मैं कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप सुनना चाहते हो कि आप कौन हो? नहीं नहीं, सुनना भी नहीं चाहता हूँ मैं कौन हूँ। अब ऐसे व्यक्ति को क्या ज्ञान दें क्या समझाएं? तो हमने कहा नहीं आप बहुत अच्छे हो बस, क्योंकि इतना उसकी दिमाग में बैठना भी नहीं था, पता था। तो बाबा कई बार कहते हैं ना, अब ऐसे पत्थर को आप वो एक बिच्छू भी होता है अगर पत्थर उसके सामने आता है तो क्या होता है, उसको चलो एक बार डंक मारा वो पत्थर है तो क्या करेगा, छोड़ देगा, नरम स्थान देखेगा तो और डंक मारेगा। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं कि ज्ञान पात्र को दो, अब वो पात्र है ही नहीं, उसके योग्य है ही नहीं, तो उस पर दया ही आती है, शुभ भावना रखते हैं कि बाबा इनको बुद्धि दे और क्या, हम इनके पीछे तो नहीं पड़ेंगे। इसलिए बाबा हमें जब ये कहते हैं कि अपने आप को पहचानो, ये सदियों से जो चलता आया है ये कोई नई बात नहीं है, बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने भी यही प्रश्न किया, अपने आप को पहचानो अपने आप को पहचानो, सोक्रेटिस एरिस्टोटल प्लेटो ये ग्रीक फिलोसोफर्स होकर गए हैं, उनकी जो फिलोसॉफी में पहला प्रश्न यही था नो दाई सेल्फ। विवेकानंद के लिए कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए भी कहते हैं, वो जब पहली बार अपने गुरु के सामने गए तो उनके गुरु ने उनसे ये प्रश्न पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने पहला ही उत्तर यही दिया, यही तो हम जानने आए हैं, यही तो हम जानने आए हैं। तो हम कौन हैं, बाबा ने हमको पूरी जानकारी दी है। और फिर उस निश्चय से अगर हम कोई भी कदम उठाते हैं फिर उसका नशा रहता है तो अवश्य हम सफल होते हैं जीवन में। तो जैसे हमने कहा मैं होली हंस हूँ, ऑटोमेटिकली अगर किसी के ऊपर कोई दृष्टि गई कोई अवगुण दिखाई दिया तो क्या बुद्धि में आएगा, मैं तो होली हंस हूँ, मुझे किसी का अवगुण नहीं देखना है, मुझे किसका गुण देखना है। भले 99 अवगुण होंगे पर एक गुण जरूर होगा, कितने भी उनके अंदर अवगुण हो लेकिन एक गुण जरूर होगा। और मुझे क्या करना है उसका वो जो एक गुण है ना वो ही देखना है। 99 अवगुणों पर नजर नहीं डालनी है और उस एक गुण से हम उनके 99 अवगुण भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि एक गुण उसमें है। इसलिए बाबा कहते हैं ना कलयुग अंत में हम आते हैं तो आत्मा की ज्योति एकदम बुझ नहीं जाती है, उझाई जाती है ना, बाबा उझाई शब्द बोलते हैं, मना जरा सी लीक रह जाती है। अमावस्या की भी रात होती है बिल्कुल लगता है कि चंद्रमा है ही नहीं लेकिन कहाँ एक छोटी सी लीक कहीं दिखाई देती है, तो लुप्त थोड़ी हो जाता है लेकिन अमावस्या है, खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो इसीलिए अगर उस गुण को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम उनको सम्मान देंगे उस एक गुण से। और अगर अवगुण दिखाई भी देते हैं तो हम पहले ये कोशिश करेंगे वो अवगुण मेरे में नहीं आए, मेरे में ना आए, क्योंकि अगर अवगुण देखूंगी तो वो अवगुण मेरे अंदर आ जाएंगे, वो माया या भूत जो भी है वो मुझे भी लग जाएगा क्योंकि अवगुण देख रही हूं। हम जेलों में राखी बांधने जाते थे तो जेल के बाहर ही लिखा रहता है क्योंकि अंदर तो कैदी होते हैं और कई तो खूंखार कैदी होते हैं, एकदम पता नहीं क्या क्या हत्याएं की होगी, उनको जेल में डालते हैं और हम लोगों को उनको राखी बांधनी होती थी। तो पहले तो ये बड़े अक्षरों में वहाँ लिखा रहता है अब हेट नॉट द सिनर बट हेट हिज सिंस, इंग्लिश में पाप से नफरत करो पापी से नहीं, पाप से नफरत करो पापी से नहीं, क्योंकि सारे पापी अंदर है ना, कितने अपराध किए होंगे, कितने पाप किए होंगे, कितनों की हत्याएं की होगी, पता नहीं क्या क्या किया होगा, चोरी डकैती हाँ बहुत कुछ किया होगा। तो पाप से जरूर नफरत करो, उसने जो पाप किया है उसकी उसको सजा तो मिल रही है लेकिन उस पापी से नफरत मत करो क्योंकि वो भी तो एक आत्मा है ना, वो भी तो एक आत्मा है और वो आत्मा भी तो परमात्मा की संतान है ना। और सचमुच हम कैदियों को जब राखी बांधते थे, हाँ इसने अनुभव किया है कैदियों को राखी बांधते हुए, गए हैं कोई जेल में जी, उनको कर्म फिलोसॉफी बताते थे और फिर उनको अभी फिर उनको कहते आप ये हमारे भाई हो, हम आपकी बहनें हैं, अभी सब पुरानी बातें जीवन की सब बातें भूल जाओ और अगर आपने कोई सचमुच ऐसे पाप किए वो लिख के दो, भगवान को हम आपकी ये चिट्ठी भेज देंगे और आप भगवान आपको बहुत माफ़ कर देगा, सचमुच माफ़ कर देगा, आपको सच्चाई से लिख के दो, भले नाम मत डालो पता थोड़ी चलेगा, नाम नहीं डालो हम किसी को देंगे नहीं, वो बस भगवान को पहुंचा देंगे, हम भगवान के दूत बन के आए हैं, सचमुच ऐसे कहते थे हम। और वो सफ़ेद वस्त्रधारियों को देखते थे, नमन करते थे, पांव पड़ते थे और सचमुच वो जैसे सामने आते थे राखी बंधवाने के लिए उस समय उनकी आंखों से आंसू आते थे, आंखों से आंसू आते थे और वो चिटकी, क्योंकि वो कहते थे हम आपको पैसा देंगे, अब पैसा कितना होगा उनके पास, तो पैसा निकाल के देते थे, हम कहते आपके पैसे नहीं चाहिए, भगवान को पैसे नहीं चाहिए, भगवान को शिव को तो बस धतूरा और ये अक्क और ये सब कखपन चाहिए, भगवान को बहुत 108 प्रकार का भोग नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तो सचमुच वो करते थे, तो देखो आखिर उनके अंदर भी तो आत्मा है ना, मुझे याद है मैं करेबियन गई थी, अमेरिका के कई छोटे छोटे देश हैं करेबियन कंट्रीज कहते हैं, तो वहाँ पर ये निग्रो लोगों को, वो अफ्रीका से जो काले लोग निग्रोस, उनको वहाँ ले आते थे और उनसे बहुत काम करवाते थे, बहुत उनको सितम देते थे, बहुत सितम, बेचारे वो रोते थे। और उसमें क्या वहाँ लिखा, उनका म्यूजियम आजकल तो नहीं कर पाते हैं, तो वह म्यूजियम बने हुए हैं जो कैसे उनको सितम डालते थे। और उसमें क्या लिखते थे, क्यों सितम डालते थे, क्योंकि उनके अंदर आत्मा नहीं है, उनको आत्मा ही नहीं है। आत्मा हो तो थोड़ा ध्यान जाए कि हाँ इसकी आत्मा को दुख होगा, ये तो बस जड़ है। इसलिए जबरदस्ती भी उनसे ऐसे काम करवाते थे और वो रोते थे और जबरदस्ती करते थे, स्लेव्स बनते थे ना, ये अमेरिका उनको लाते थे। उस समय बहुत पुरानी बात है, अभी तो वो जो निग्रोज जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, उनके जो 3-4 पीढ़ी आ गई, वो तो राजा है, अभी तो सब स्वतंत्र है, लेकिन उस समय बहुत उनके ऊपर सितम डाले थे। तो कहने का भाव, उनको इसीलिए समझते थे कि करो क्योंकि आत्मा नहीं है इनके अंदर, पर आत्मा तो सब में है ना। तो इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं, उनको आत्मा देखो, खुद को भी आत्मा देखो। हर बार हर मुरली में बाबा ये जरूर कहता है, कोई भी आत्मा हो, कोई भी हो, उनको पहले आत्मा देखो। कई पुलिस वाले आते कहते बहन जी हमको मारना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मिलिट्री वाले आते हैं हमको गोली चलानी पड़ती है, तो बहन जी हमारा पाप बनता है क्या? तो हम कहते हैं कि देखो चलो एक पाप बना, हाँ परंतु चलो सरहद पर आप हैं और गोली आपको चलानी है, और जैसे वो तो दुश्मन को तो मारना है, परंतु आप जो 140 करोड़ भारतवासियों को आप बचा रहे हो, रक्षा कर रहे हो, तो उनका जो पुण्य मिलेगा उसकी भेंट में वो एक जो पापी है, जो आपकी ड्यूटी है वो कर रहे हो, गोली चला रहे हो, ये पाप तो उसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों की आप रक्षा कर रहे हो, इसीलिए ये आपका कर्तव्य है। और अगर वो कर्तव्य पालन नहीं किया तो वो पाप चढ़ेगा, वो पाप चढ़ेगा कि नहीं 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 हत्या करना तो पाप है, तो मारना हुआ ना, पर वो आतंकवादी है तो आतंकवादी को क्या करना है, उसको बचा के रखना है ताकि और 100-200 को मार डाले, ऐसे तो नहीं ना। तो इसीलिए कर्म फिलॉसफी बाबा ने हमें समझाई है। परिवार के अंदर हम देखते हैं चाहे कोई कैसा भी है, फिर भी रिश्ता है ना। आजकल तो बाबा ने आज भी या कल मुरली में कहा कि आज कहा ना कि पहले तो भाई 60 वर्ष की आयु होती थी, बच्चे को दे दिया और बच्चा तो पिता की संभाल करता था, आजकल तो क्या करते हैं आजकल के बच्चे कैसे हैं, क्या वर्णन करें, सब जानते हैं कलयुग के बच्चे। तो कलयुगी संतान क्या है आजकल की, बाबा यही कहते हैं बिच्छू टिंडर, पर मोह इतना होता है, वो मोह दुख देता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जितनी बार देह अभिमान वश मैं का मेरा कहा, वो पाप बन जाता है। मैं अभिमान वश और मेरा मोह वश, वो पाप जरूर बनता है। तो इसीलिए मैं को पहचानो और मेरा को पहचानो। इसलिए बाबा हमेशा क्या कहते हैं, जब मैं कहते हो तो क्या समझो, मैं आत्मा, फिर कैसी आत्मा वो भी याद करो, फिर जब मेरा कहते हो तो ये मेरा और कुछ नहीं, मेरा बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो जब ये बात बुद्धि में आए तो ऑटोमेटिकली उस मैं को सही रूप में पहचानेंगे। तो चार प्रकार की वृत्ति बताई जाती है। एक है कि मैं बहुत बुरा हूँ और बाकी सब अच्छे हैं। जब उनसे वार्तालाप करते ना, बहन जी मैं तो निकम्मा हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, तो मैं बुरा बाकी सब अच्छे, तो औरों की खूब महिमा करेगा और अपनी ग्लानी करेगा। वो सही है क्या? अपनी ग्लानी करते रहना, तो अगर अपनी ग्लानी करते रहते हैं तो हम थोड़ी पे ऊँचे चढ़ सकते हैं। फिर दूसरी वृत्ति वाले, मैं अच्छा, अपनी इतनी महिमा करेंगे, मैं ऐसा, जिसको बाबा कहते हैं मियाँ मिठू। मियाँ मिठू कहते ना, वो मियाँ जी थे, उनका मिठू उनका कोई तोता होगा, तो वो तोता जो मियाँ जी कहते थे वो रिपीट करता था। तो जो मियाँ जी कहते थे मैं ऐसा, तो वो मिठू वो तोता भी रिपीट करता था। अक्ल नहीं थी, समझ कुछ नहीं थी, लेकिन क्योंकि मियाँ जी कहते थे तो उनका वो तोता था, तो उनका नाम था ये मियाँ मिठू है, अपनी महिमा करता ही रहता है। तो अपनी महिमा करना, और दूसरे के अरे छोड़ो उसको, वो तो बेकार आदमी, वो तो ऐसा है, ये दूसरे प्रकार के लोग। और तीसरे प्रकार के लोग, मैं भी बुरा तुम भी बुरे, सारे ही बुरे, सारा संसार ही बुरा, सब कुछ बुरा, जिसके विषय में बात करो वो भी ऐसा ऐसा, और मैं भी ऐसा, सब बुरे ही बुरे। तो चौथे प्रकार के कौन से? हाँ, हम भी अच्छे, तुम भी अच्छे, सब अच्छे, क्योंकि सब भगवान के बच्चे। तो सबको सम्मान दो, खुद को भी दो। बाबा मम्मा की यही तो विशेषता थी। मम्मा तो छोटों को भी आप कह के बुलाती थी, कभी तुम नहीं, कभी भी तुम शब्द मम्मा के मुख से कभी निकला ही नहीं। छोटे बच्चे को भी मम्मा कहती थी, आपका नाम क्या है, हाँ तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे बोलते ना हम लोग बच्चों को, लेकिन नहीं, आप। तो बच्चों के प्रति भी इतना ही रिस्पेक्ट, क्योंकि आजकल सब रिस्पेक्ट चाहते, सब सम्मान चाहते, प्यार सम्मान में आ जाता है। ऐसे नहीं प्यार देना है और सम्मान नहीं देना है, या सम्मान देना है और अंदर में कुछ और सोचना है। कोई आ गया मेहमान बाहर से, तो उसको सम्मान दिया, आइए 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 पधारिए, बहुत दिनों बाद, अंदर में कहते ये काम का आया, मेरा सिर खाने आया, अंदर ये कह देंगे मेरा टाइम वेस्ट करने आया, मेरा सिर खाएगा अभी। तो देखो होता है ना, अब उसको वाइब्रेशन तो आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि अंदर में तो कुछ सोचा और है, तो बाहर से भले आइए आइए, अच्छा वो जल्दी जाएगा, क्यों जा रही है, अभी तो बैठी है ना, और अंदर सोचते जाए तो अच्छा है। तो ये तो दोहरा रूप हो गया ना, तो इसलिए अंदर एक बाहर दूसरा, दुनिया में तो ये चलता है। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, जो सोचो वही बोलो वही करो। सोच अगर बहुत अच्छी है पर शब्द बुरे हैं, या सोच अंदर में बुरी है और शब्द अच्छे हैं, तो ये दोहरा रूप भी ज़्यादा समय नहीं चलता है। फिर अंदर मन खाता है कि देखो मैंने इनके लिए क्या क्या सोच लिया। तो जब हम कहते हैं निश्चय, तो खुद में भी निश्चय, औरों में भी निश्चय, इसको बाबा कहते हैं परिवार में निश्चय। कोई तो एक गुण होगा जरूर, चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार। अलौकिक परिवार भी तो आखिर सतयुग का परिवार है ना, हम सब सतयुग से आए हैं, सतयुग से जन्म लेते आए, किसी न किसी नाम रूप में हम एक दो के परिचित हैं इस हर जन्म में, तभी तो अंत में इस संगम पर हम अलौकिक परिवार बने हैं। वो लौकिक परिवार तो कर्मों का हिसाब किताब है, और कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ तो कोई भी किसी का नहीं है, बाप न बेटा, कोई किसी का नहीं है। लेकिन ये अलौकिक परिवार ये कर्मों के अनुसार नहीं है, ये सतयुगी परिवार के आधार से आया है। कोई न कोई ऐसी विशेषता हर एक को है जो हम एक हुए हैं। लौकिक परिवार कोई विशेषता के कारण एक नहीं होते हैं। बाप तो बिल्कुल अलग विचार वाला, बेटा अलग विचार वाला, ऐसे भी होते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं वो लौकिक परिवार जो है उनको भी रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि आखिर वो भी तो एक आत्मा है ना। भले वो नहीं समझ रहा है, वो बगुला है, हम हंस बन रहे हैं, लेकिन तू बगला हो, तुम बगला हो, ऐसे थोड़ी कहेंगे उसको, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। इसीलिए वो बगुला है भले, लेकिन चतुर तो है ना। बगुला बड़ा चतुर होता है, एक टांग पर खड़ा होगा ऐसे आंखें बंद करके, जैसे कि कुछ देख ही नहीं रहा है, और मछली उसके आगे आगे एकदम आंख खोल के तुरंत मछली को पकड़ लेता है वो बगुला। मछली को लगेगा तो एक आंख पर खड़ा है, बड़ा योगी है, पर तुरंत वो एकदम पकड़, वो एक ही टांग पर खड़ा होता है, कई बार वो पकड़ लेगा। तो कहने का भाव है स्वयं में निश्चय, जो बाबा हमें स्वमान देते हैं, रोज अपनी चेकिंग करो। बाबा कहते हैं तो मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। कई बार बताते हैं, एक भाई बाबा के सामने आया था, अव्यक्त बाप दादा के आगे हम बाबा हम बैठते थे सारी सारी रात, बाबा मिलते थे सबसे। तो एक भाई आया, बाबा के सामने बैठा, लेकिन बाबा से दृष्टि नहीं ले रहा था, क्योंकि बाबा के पास आते थे बाबा से दृष्टि लेते थे, तो बाबा से दृष्टि नहीं लिया और एकदम सिर नीचे करके बैठा। तो मैंने उसको कहा बाबा से दृष्टि लो, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि में कितनी शक्ति है बाबा की। तो एक ऊपर आंख खोले और फिर नीचे करे, वो दृष्टि में वो ले ही नहीं पा रहा था। तो फिर बाबा ने उससे पूछा, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझते हो? कहता है नहीं। सीधा बाबा के आगे कह दिया नहीं, लेकिन बाबा ने उसको मनवाया कि कैसे तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने कहा अच्छा आप कौन हो? तो कहा मैं आत्मा हूं। ज्ञान तो था ना, मुरली भी पढ़ता था, सब कुछ करता था, सेंटर पर भी क्लास करता था। आप कौन हो? तो बोला मैं आत्मा हूं। आप किसके बच्चे हो? शिव बाबा के बच्चे। ये भी कहा अच्छा शिव बाबा कौन है? मेरा पिता है। ठीक जवाब दिया। तो शिव बाबा आपका परम पिता है, शिव बाबा सर्वशक्तिवान है? है। आप उसके बच्चे हो? है। तो बाप सर्वशक्तिवान तो बच्चा क्या है? तो खुद ही मुख से बोला मास्टर सर्वशक्तिवान, तो आप हो ना मास्टर सर्वशक्तिवान, जबकि सर्वशक्तिवान के बच्चे हो। बाबा ने उनसे ही जवाब लिया, ये नहीं आर्ग्यू नहीं किया तुम कैसे कहते हो मैं नहीं हूं मैं नहीं हूं, पर उनसे ही कहलवाया, उनसे ही कहलवाया। तो बाबा की ये विशेषता थी, उनसे ही कहलवाना। अगर हमारे अंदर कुछ असमंजस हो या कुछ अंदर में थोड़ी हिम्मत नहीं है, तो बाबा हमको कुछ जो कहते थे उनसे हिम्मत आ जाती थी। जैसे मैं अपना मिसाल दूं, पहली बार 1974 में हमको विदेश जाना था, पहली बार 74, तब तो विदेश में इतनी सेवाएं भी नहीं थी, पर अफ्रीका का निमंत्रण मिला, वेदांती बहन और हम दोनों के लिए निमंत्रण मिला। तो हम बाबा से छुट्टी लेने गए, तो बाबा ने हम दोनों को देखा, तो बाबा ने हमसे पूछा, नहीं पहले तो हमने बाबा को कई बातें पूछी, जिसमें बाबा से पहले पूछा कि बाबा वहाँ हम क्या सेवा करेंगे। तो बाबा ने कहा कि धरनी तैयार है, देखो कितना बाबा ने पोइटिक भाषा बोली, धरनी तैयार है, आपको केवल बीज डालना है। जैसे धरनी तैयार हो तो उसके बाद बाकी सहज काम क्या होता है? बीज डालना। धरनी तैयार करने में मेहनत लगती है, धरनी तैयार है, आपको सिर्फ बीज डालना है। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा वहां किस प्रकार के लोग मिलेंगे? तो बाबा ने कहा, आपके सामने बहुत धनवान लोग आएंगे, बहुत धनवान। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना, ये तो कितने धनवान हैं और हम लोग तो क्या है, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बाबा भेज रहा है, कोई निमित्त बना, उसने टिकट हमारी बनाई और हमको बस सेवा करने जाना है, मकान दिया। तो बाबा ने कहा कि कितने भी धनवान होंगे, लेकिन उस समय आप ये नहीं सोचना, ये तो बहुत धनवान व्यक्ति है और हमारे पास तो कुछ इनके हिसाब से नहीं है। तो उस समय ये सोचना, आपकी इनके पास दुनिया का धन है लेकिन शांति का धन नहीं है। तो जो धन इनके पास नहीं है वो आपको देना है। कौन सा धन? शांति का धन। अब नशा चढ़ गया क्योंकि पता चल गया अभी क्या करना है, शांति नहीं है उनके पास। जितना ज्यादा धनवान उतना अशांत। फिर बाबा ने कहा, आपके पास पढ़े लिखे बहुत आएंगे, बहुत पढ़े लिखे लाएंगे, साइंटिस्ट खुद आएंगे, लेकिन उस समय ये नहीं सोचना, हम तो चलो ग्रेजुएशन तो मैंने किया था और वो तो पता नहीं पीएचडी क्या क्या होंगे। उस समय ये सोचना, इनको दुनिया का ज्ञान है पर खुद का ज्ञान नहीं है। हाँ, जिसको सारी दुनिया का ज्ञान हो पर खुद का ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या हुआ? खुद का ही ज्ञान नहीं है, मैं कौन हूं पता ही नहीं। और सचमुच ऐसा व्यक्ति मिल गया। उस व्यक्ति, एक व्यक्ति साइंटिस्ट आया था, उसको ज्ञान दे रही थी, मैंने कहा आप कौन हैं? तो उसने कहा मैं फलाना हूं, फिर कहा वो तो शरीर है, तो ये है, वो है, 10 प्रश्न है, फिर उसका वही जवाब दिया, ये तो आपका है, आप कौन है, आप कौन है, बार बार पूछा आप कौन है, जाति, भाषा, रंग, ये सब जो भी कुछ बताया। मैंने कहा ये तो आपका आपका व्यवसाय है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है, पर आप कौन है? आखिर उसको जवाब नहीं आया, तो कहता आप ही बता दो ना। आप ही बता दो ना, है ना, हाथ जोड़ दिए, क्योंकि वो सोचा ना इतना सारा पूछ रही है और अब मेरे को तो दूसरा तो उत्तर आता नहीं, आप ही बता दो। फिर आत्मा का ज्ञान सुना। फिर जब बाबा से मैंने एक और प्रश्न किया, बाबा आप हमको इतना दूर विदेश भेज रहे हो, विदेश क्या होता है पता ही नहीं। हाँ, मैं पढ़ाई तो की थी लेकिन कितना दूर है, क्या भाषा होगी वहाँ, कुछ मालूम नहीं। तो बाबा आप हमको इतना दूर भेज रहे हो, और 74 था उस समय तो, और ये अफवाह थी कि 76 में विनाश हो जाएगा, 76 में विनाश हो जाएगा। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा अगर हम वहाँ रहें और उसी बीच विनाश हो जाए तो विनाश हो जाए तो, ऐसे नहीं बच्चा पूछता है इतना नादानी से, विनाश हो जाए तो? तो बाबा ने मेरे से प्रश्न किया, बच्ची कौन भेज रहा है, कौन भेज रहा है? तो मैंने कहा बाबा भेज रहे हैं, मैं अपने मन से थोड़ी जा रही हूँ। मैंने कहा बाबा भेज रहा है। फिर बाबा ने कहा अगर बाबा भेज रहा है तो जिम्मेदार कौन, जिम्मेदार कौन? बाबा। तो मैंने कहा बाबा। तो फिर बाबा ने कहा अगर बाबा जिम्मेदार है तो आपको क्यों ख्याल आता है, आपको क्यों ख्याल आता है? हाँ, जैसे बच्चा होता है ना, बाप ने हाथ पकड़ लिया, अब बच्चे को थोड़ी ख्याल आएगा कि भाई कुछ हो ना जाए, बाप ने पकड़ा हुआ है ना। एक मिसाल देते हैं, पिता ने बच्चे को कहा कि बेटा मेरा ये मुझे हाथ दो, हाँ कहीं गुम ना हो जाओ, मुझे हाथ दो। तो बच्चे ने कहा नहीं पिताजी, आप हाथ दो हमें, हम हाथ देंगे तो मेरा हाथ फिसल भी सकता, आप हाथ देंगे ना, आप हमको पकड़ेंगे तो वो हाथ छूटेगा नहीं, मैं पकड़ूंगा तो मेरा हाथ तो छोटा है पर आप मुझे पकड़ेंगे तो वो छूटेगा नहीं। तो अगर बच्चा हाथ पकड़े माँ तो फिर छूट सकता है, तो आप पकड़ो। तो बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है ना, अभी बाबा थोड़ी हमारा हाथ छोड़ेगा, पर हम छोड़ सकते हैं, बाबा थोड़ी छोड़ेगा, बाबा थोड़ी डाइवोर्स देगा, फारकती देगा, बच्चे देते ना, बाप देता है क्या, पिता थोड़ी देता है, बच्चे देते हैं, बस अलग हो जाना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये निश्चय इतना पक्का हो कौन मिला है मुझे, फिर बाबा पर निश्चय, कौन मेरा पिता, कौन मेरा टीचर है। टीचर का भी नशा होता है, बहुत बड़ा नशा होता है। एक मेरा, मैं कई बार सुनाती हूँ, हम शिविर करा रहे थे तो एक व्यक्ति आया, बहुत पढ़ा लिखा था, PhD बहुत किया हुआ था, और सबको ये बताता था, मेरा जो प्रोफेसर था ना वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो राष्ट्रपति बना सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो पहले प्रोफेसर था, PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, और वो उसने उनसे पढ़ाई की थी। तो मेरा प्रोफेसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, और हमारा टीचर कौन है, हमारा टीचर कौन है, स्वयं भगवान हमारा टीचर है, वो हमको पढ़ा रहा है। हमारे पास एक यज्ञ के अंदर एक भाई था, अब ये छोटा बच्चा था, माँ उसको लेकर आई यज्ञ में, तो थोड़ा दिमाग का भी कमज़ोर था, अब माँ आ गई तो बच्चे को लेकर आई, अब वो कमज़ोर तो था ही, उसको बाबा ने कहा था इसको सिखाओ, गिनती सिखाओ, तो गिनती जैसे सीखता था तो 12 तक आता, 13 उसको कभी याद नहीं आता था, 12 के बाद 14, तो बाबा कहते थे साकार में इसको जो पूरा ये गिनती सिखा ले ना बाबा उनको चांदी का ग्लास देंगे, पर कोई सिखा नहीं सका क्योंकि 13 भूल जाता था। लेकिन उसको बाबा ने कहा, उसका नाम अर्जुन था, बाबा ने कहा तुम सच्चे अर्जुन हो क्योंकि तुम्हारा टीचर एक ही शिव बाबा है, लौकिक टीचर है ही नहीं। कौन है तुम्हारा टीचर, शिव बाबा। हम लोगों ने लौकिक टीचर तो किए होंगे ना, स्कूल पढ़े होंगे, कॉलेज पढ़े होंगे, तो टीचर तो बहुत मिले होंगे ना हमको, पर केवल भगवान ही उनका टीचर है। तो ये उसको बहुत नशा रहता था, किसी ने, कोई ने पूछा तुम कहाँ पढ़े हो, भाई भगवान मेरा टीचर है, ये जवाब दे, इतना फट से दे देता था, इतना नशा था उसको, बाकी कुछ नहीं समझता था, लेकिन ये जरूर समझता था। इसलिए बाबा माताओं की कितनी महिमा करते हैं, भले माताएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं होगी, पुरुष लोग तो पहले तो बहुत पढ़ते थे, माताएं कहाँ इतनी पढ़ती थी, लेकिन हाँ बाबा ने फिर भी माताओं को कहा, क्या कहा, क्या नशा चढ़ाया, तुमने तो भगवान को पहचान लिया, विद्वान पंडित आचार्य क्या नहीं पढ़े लिखे, उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, और माताओं ने पहचान लिया ना, माताएं कई होंगी इसमें भी जो बिल्कुल स्कूल नहीं गई होगी, जो कभी स्कूल नहीं गई, अक्षर ज्ञान नहीं है, वो हाथ उठाओ, है कोई माता, देखो स्कूल कभी नहीं गई, कभी नहीं गई स्कूल, देखो अच्छा और भी माताएं हाथ उठा रही है, अच्छा आप भी कभी स्कूल नहीं गई, अक्षर ज्ञान नहीं है, मुरली नहीं पढ़ती हो, कैसे पढ़ती हो, बाबा ने सिखाया, अच्छा अच्छा, और भी उठा रही है माताएं, उठाओ माताएं, कौन जो कभी स्कूल नहीं गई, ये भी नहीं गई, अच्छा हाथ, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ, परंतु अभी नशा है ना, कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ जा रही हो, बोलो यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, बैठो बैठो, बहुत अच्छा, क्योंकि पहले कहाँ माताओं लड़कियों को कहाँ पढ़ाते थे, तुमको तो चूल्हा ही फूकना है, तुमको तो रोटियाँ ही बेलनी है, और गांव में तो बिल्कुल ही नहीं, तो खास करके लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई शौचालय नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो लड़कियों को भेजते भी नहीं थे घर से बाहर, अभी तो दुनिया ही बदल गई है, लेकिन उस समय की बात है, क्यों नहीं लड़कियों को स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि वहाँ शौचालय एक ही है, लड़के भी वहीं जाते हैं, इसलिए यहाँ तक माँ बाप इसमें भी डरते थे। तो कहने का भाव है कि हमारा टीचर कौन, अर्जुन का भी टीचर भगवान था ना, भले पर वो इतना पढ़ा हुआ था, विद्वान था, बहुत अच्छी कलाएं थी उसमें, लेकिन पहले भगवान को नहीं पहचाना, भगवान मुझे ये कह रहा है ये पहचाना नहीं, अपनी विद्वता दिखा रहा था, है ना। गीता का अगर आप सार देखो, अर्जुन अपनी विद्वता ही दिखा रहा है, भगवान उनको एक बात कह रहा है और वो भगवान को प्रश्न पूछ करके उसका वो जो समझता मैं ज्यादा होशियार हूं। भगवान ने कहा इन सबको मारो, भगवान कैसे मैं मारूं, ये मेरे मामा चाचा काका गुरु गुसाई इन्होंने तो मुझे ये सब सिखाया, मैं इनको मार डालूं, ये तो मेरा पाप होगा। अरे भगवान कह रहे हैं मारो और तुम कहते हो पाप होगा। तो कहा मैं कैसे मारूं, ये तो बड़ा पाप होगा, ये अपने आप मरे तो अलग बात है, मैं कैसे मारूं। तो भगवान ने सबसे पहले आत्मा का ज्ञान दिया, दूसरा अध्याय जो है वो पूरा आत्मा का ज्ञान है। तुम आत्मा को मार नहीं सकते हो, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, ये तो वैसे ही मर जाएगा, इसकी मौत तो निश्चित है, पर सिर्फ तुम निमित्त बन करके मारो। है तो बाबा कहते नष्टो मोहा बनने की बात, मारो गोली माना भूल जाओ, इसको याद मत करो, लेकिन वो मारो कर दिया, एक फिजिकल रूप दे दिया। लेकिन आत्मा का ज्ञान समझ करके भी अर्जुन नहीं मान रहा है, पता है आत्मा मरती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, चोला बदलती है, सारा है ये आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में, लेकिन फिर भी उसको संकोच हो रहा है। फिर भगवान ने दूसरा कदम उठाया, उसको निश्चय उनको मारने के लिए कदम लिया, क्या, हे अर्जुन तुम तो क्षत्रिय हो, समान याद दिलाया, तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा ये कर्तव्य है लड़ना, क्षत्रिय दिखाते ना ये सारे पांडव, तो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय माना लड़े, जो मैदान में जाके लड़ाई करे, सामना करे, डरपोक न बने, ऐसे नहीं डर करके भाग आए घर, मरे और मारे। हाँ, यहाँ जो क्षत्रिय होते थे ना राजपूत, वो उनके लिए कहा जाता था, उनकी पत्नी उनको तिलक लगाती थी और कहती थी विजयी भव, विजयी बन के आना, हार खा के नहीं आना, या तो विजयी बन के आओ या तो भले युद्ध में शहीद हो जाओ, लेकिन हार खा के नहीं आना, ये राजपूतों के लिए विशेषता थी। धर्त प्रिय धर्म न छोड़िए, प्राण जाए पर प्रण वचन न जाए, तो ये था। तो क्षत्रिय हो तुम कायर मत बनो, युद्ध का मैदान छोड़ के मत जाओ, तुमको तुम्हारे आगे की पीढ़ियां क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज तो कायर थे, इसीलिए तुम अपना फर्ज निभाओ, अपना कर्तव्य निभाओ, ये क्षत्रिय रूप के रूप में, यानी ये स्वमान आत्मा को याद दिलाते हैं बाबा ना, पहले तो आत्मा देखो सबको और खुद को भी उसी आत्मा की स्थिति में देखो। लेकिन वो भी नहीं कहता, कहता है भले मैं हूं क्षत्रिय लेकिन मैं ये पाप नहीं करूंगा, मारने का पाप नहीं करूंगा, बाकी तो बहुत कुछ है गीता में, लेकिन ये जो पांच बातें बताती हूँ। फिर तीसरी बात अर्जुन को भगवान ने फिर तीसरी बात कही ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए, क्या कहा, देखो तुम इस युद्ध में अगर विजयी बनोगे तो तुम स्वर्ग की राजाई लोगे, स्वर्ग का मालिक बनोगे, स्वर्ग तुम स्वर्ग में जाओगे और मालिक बनोगे, अगर तुम हार भी गए ना इस लड़ाई में तो भी तुम स्वर्ग में जरूर जाओगे। और उसने क्या कहा, मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं मुझे ऐसा स्वर्ग चाहिए ही नहीं, आके इतनों को मार के मैं स्वर्ग में जाऊं, ऐसा क्या स्वर्ग, इसलिए चाहिए ही नहीं, माना भगवान की हर बात को नकारने वाला। फिर चौथा उपाय भगवान ने उसको समझाने की कोशिश की, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, और उनको साक्षात्कार करा दिया, ये सब शमशान हुआ पड़ा है, सब खून की नदियां, सब मरने वाले हैं, इनकी मौत निश्चित है, तुम सिर्फ निमित्त बनो, बस सिर्फ निमित्त बनो, क्योंकि कल करेगा तो वही ना भगवान का ये काम है, तुम सिर्फ निमित्त बनो। इसलिए दिखाते हैं ना कि कितनी बार उनके आगे परीक्षाएं आई, लेकिन हर बार वो बच जाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण उनको युक्ति बताता था कैसे इनसे पार हो जाओ। और जब संजय को धृतराष्ट्र बता रहा है युद्ध का सारा समाचार, तो संजय यही कहता है कि जब, क्योंकि धृतराष्ट्र पूछ रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है संजय से, तो संजय यही कहता था मैं तो यही देख रहा हूँ बस सब जगह स्वदर्शन चक्र ही चल रहा है और स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण का चल रहा है, सबके गले कट रहे हैं। यानी ये पांडव मार रहे हैं नहीं, भगवान का स्वदर्शन चक्र चल रहा है और सब मरते जा रहे हैं मरते जा रहे हैं। हम मैं तो वही देख रहा हूँ, संजय वही देख रहा था। और फिर जब चौथी बात ये कही कि सब इनकी मौत निश्चित है, बस तुम केवल निमित्त बनो बस, क्योंकि कर्म तो हमें करना है ना। कई कहते हैं ना बाबा ही कर दे, बाबा कहता है मुझे थोड़ी फल पाना है, फल किसको पाना है, फल तो बच्चों को पाना है ना, तो बाबा ही कर दे सब कुछ तो फिर बच्चों को फल कैसे मिलेगा। कर्म भी बच्चों को ही करना है, इसलिए कहा ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तुमको करनी है, पर युक्ति जरूर बताए कैसे करो कैसे करो कैसे उससे निकलो। जरूर भगवान ने युक्तियां बहुत बताई, कर्ण को कैसे मारो, उनको कैसे, उनको कैसे, उनको कैसे, एक एक का बहुत विस्तार है। लेकिन जब उस समय भी नहीं समझा तो फिर विराट रूप का साक्षात्कार कराया। हाँ विराट रूप, वो तो विष्णु का अवतार बताते, इतने सब सिर देवताओं के और इतनी वो क्षत्रिय भुजाएं और ये सब वैश्य शूद्र ये सब, और एकदम आग निकल रही है और कैसे सब इतना भयंकर वो लाइट देखी और कैसे सारे वो मच्छरों सदृश सब मुंह के अंदर जा रहे हैं आत्माएं, और इतना तेज जो अर्जुन ने कहा बस करो मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इतना तेज दिखाया। और फिर समझ में आया, उसने कहा अभी अपना वापस वही मोहिनी रूप दिखाओ, तो वो तो फिर बहुत विस्तार है उसका। तो जब उसको ये समझ में आया ये मुझे कौन बोल रहा है, ये कौन मुझे आदेश दे रहा है, स्वयं भगवान, तब आखिर उसने क्या किया, घुटने टेके हाथ जोड़ा और अंत में क्या कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हुआ है, अब मुझे स्मृति आ गई कि मुझे क्या करना है। यही है गीता, हाँ गीता बस यही है। तो अपना भी, अपना स्वरूप का भी साक्षात्कार कराया, कर्तव्य का भी साक्षात्कार कराया, आत्मा का भी ज्ञान दिया ये सब, और फिर स्वर्ग का अधिकार। बाबा हमको कितना टेम्पटेशन देते हैं, बच्चे तुम स्वर्ग के अधिकारी बनोगे। कई है ना सन्यासी हम लोगों से बहुत बहस करते थे, आप लोगों को तो स्वर्ग चाहिए स्वर्ग चाहिए, हमको तो स्वर्ग वर्ग नहीं चाहिए, ये तो सुख सुख काग विष्ठा समान है, क्या हमको तो मोक्ष चाहिए। तो हम कहते थे आप लोग, वो कहते थे आप लोग स्वार्थी हो, क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग की बातें करते हो, हमें तो कुछ नहीं चाहिए बस मोक्ष चाहिए। तो हम कहते थे स्वार्थी तो आप लोग हो, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, तो अकेले आपको मोक्ष मिलेगा, चलो ब्रह्मलीन हो जाएंगे या ज्योति ज्योत समाएंगे तो आपका चलो उद्धार हुआ, आपके शिष्यों का क्या होगा, उनको थोड़ी आप ले जाएंगे, ये तो आपका अपना स्वार्थ हुआ ना कि हमें बस मोक्ष मिल जाए। यहाँ तो हम सबको ले जाएंगे स्वर्ग में, अकेले थोड़ी जाएंगे अकेले थोड़ी जाएंगे, हम सबको ले जाएंगे, भगवान स्वर्ग रचने आया है, तो स्वर्ग की स्थापना हमारे द्वारा ही करवा रहा है। इसलिए बाबा केवल धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म केवल स्थापना नहीं कर रहे हैं, जो प्राय लोप हो गया है वही देवताएं सब यहाँ बैठे हैं, देवता तो बना रहा है बाबा, लेकिन धर्म के साथ राज्य भी स्थापन कर रहा है। इसलिए हर मुरली में आता है सूर्यवंशी बनोगे चंद्रवंशी बनोगे राजा रानी बनोगे प्रजा बनोगे, क्या बनना चाहते हो, तो हर एक अपना अपना निशाना लगाए क्या बनना चाहता है। जैसा नशा होगा वैसा ही निशाना लगेगा, अगर नशा ही नहीं है तो निशाने पर क्या लगेगा, कहाँ लगेगा। और नशा तब रहे जब निश्चय हो, इसीलिए पहले निश्चय फिर नशा और फिर निशाना। तो निशाना क्या है, बाबा कहते हाथ लगा के वापस आना है, निशाना है घर जाना है फिर सतयुग में आना है, वापस इस कलयुग में नहीं आना है। इसलिए बाबा कहते उपराम भी होना है क्योंकि घर जाना है, यहाँ आना ही नहीं है इस कलयुगी दुनिया में वापस। आप मोए मर गई दुनिया, जीते जी मरना बाबा सिखाते। कोई ऐसा साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेगा, कोई को आएगा ही नहीं कहना। और शिव बाबा तो महाकाल है, महाकालेश्वर का मंदिर है ना, तो महाकाल को बुलाना माना क्या, शिव महाकाल है तो महाकाल को बुलाना माना मौत को बुलाना, नहीं तो महाकाल क्या करेगा, सबको मुक्त करेगा ना। मुक्तेश्वर है, महाकालेश्वर है, सबको मुक्त करके घर ले जाएगा। लेकिन फिर बाबा कहते कैसे जाओगे घर, सजनी बन के जाओगे या बराती बन के जाओगे, ये भी पूछते हैं। अब सजनी बन के जाना है तो उनके समान बनना पड़ेगा। तो जो बाबा के गुण है वो हमारे अंदर कितने हैं। फिर बाबा कहते सतयुग में वारिस बनना है, ब्रह्मा बाबा की गद्दी लेनी है, श्री नारायण की गद्दी लेनी है, तो कौन ले सकेगा गद्दी, ऐसा वैसा थोड़ी ले सकेगा गद्दी। जो गद्दी लेगा वो उसके समान होगा ना, समान होगा तभी तो श्री नारायण के पास वो जन्म लेगा, तभी तो उनकी गद्दी लेगा। तो सेकंड लक्ष्मी नारायण कौन बनेंगे, बाबा वो भी कहते हैं। एक हसी में कहते हो एक भाई है विदेश में है, वो दादी तो मुझे कहता है कि मुझे दादी से मिलना है, बड़ी दादी से, प्रकाशमणि दादी से। तो मैंने कहा क्यों, कहा नहीं मुझे दादी से कुछ पूछना है, दादी से मुझे मिलवाओ। ट्रांसलेशन में करती थी, दादी के पास ले जाती थी। तो दादी जी को कहता है, दादी जी मुझे एक बहुत बड़ा विश्वास है एक, कि आप सेकंड नारायण बनेंगे, सेकंड नारायण यानी नारायण की गद्दी आप लेंगे। तो दादी उसको देखती रह गई। दादी ने कहा कि आपको किसने कहा, बाबा ने तो डिक्लेयर नहीं किया है कि सेकंड नारायण लक्ष्मी नारायण सेकंड कौन बनेंगे, बताया क्या, एक का तो निश्चय है बस, उन्हों का तो बता दिया बस, सेकंड का तो बताया नहीं। तो दादी ने उनको कहा कि बाबा ने बताया है कि मैं बनूंगी, नहीं पर दादी मुझे विश्वास है पूरा निश्चय आप बनोगे। तो दादी ने मुस्कुरा के कहा आप भी बन सकते हो, आप भी बन सकते हो। हो तो शौक हो गया उसको इतना शौक आ गया मैं भी बन सकता हूँ, वो अपने लिए तो कभी सोचा भी नहीं होगा, सोचा थोड़ी होगा कि मैं भी बनूंगा, वो दादी जी बनेंगे। पर दादी जी ने इतनी बड़ी ऑफर दे दी आप भी बन सकते हो, क्योंकि कोई भी अभी निश्चित है ही नहीं, म्यूजिकल चेयर्स चल रहा है ना, म्यूजिकल चेयर्स होता है ना, खेल होता है, अब सारी कुर्सियां खाली है, अभी कुर्सी कोई भी किसी पर बैठा नहीं क्योंकि ये म्यूजिक चल रहा है। तो आउट कब होगा, जब म्यूजिक पूरा होगा तभी तो सीट मिलेगी ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बनती नहीं है, सारे अलंकार देवताओं को दे दिए, बच्चे ब्राह्मण उठाते हैं फिर फेंक देते हैं तो इसीलिए हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, ये निश्चय पक्का हो, सच्चे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली है। उन ब्राह्मणों को, लौकिक ब्राह्मणों को कितना नशा होता है पता है, कहेगा आपको पता नहीं मैं ब्राह्मण हूँ, लौकिक वाले कहते ठीक है आप भी हो हम भी हैं, थोड़ी मना करे कि आप नहीं हो, ये नहीं उनको कहते आप तो कुक वंशावली हो मुख वंशावली ऐसे नहीं कहते हैं, लेकिन आप भी हो, परंतु हम को ये निश्चय है कि ब्रह्मा से हमने डायरेक्ट हम पैदा हुए, ब्रह्मा से डायरेक्ट मुख की रचना बने हैं, जो शिव परमात्मा ने उनके द्वारा ज्ञान दिया उनकी डायरेक्ट संतान बने, उनको इससे पूछो, उनको पूछो आप भी अपने आप को ब्रह्मा की संतान, ब्राह्मण माना ब्रह्मा की संतान, तो ब्रह्मा कब आया था बताओ, ये लाखों साल पहले, और हम कहते वो तो अभी भी हमारे साथ है। बाबा गए हैं क्या? यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने यही कहा था, बच्चे साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे। जब बाबा ने ये कहा था उस समय यज्ञ में, तो कईयों ने यही सोच लिया कि कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि साथ है, साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, तो कोई शरीर नहीं छोड़ेगा, सब ऐसे ही रहेंगे और सब एक साथ चले जाएंगे। उनको ये थोड़ी बुद्धि में था कि इतनी बेहद की सेवा होगी, देश विदेश में सेंटर खुलेंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं था बुद्धि में, क्योंकि यहां तक कह दी अगली दिवाली नहीं आएगी, अभी 86 दिवालियां हो गई। परंतु अगर बाबा ये नहीं कहते होते तो दादियां कई बार कहती इतने साल का ये होगा तो हमको, हम तो पता नहीं आते भी नहीं, लेकिन बाबा ने साक्षात्कार कराया। अभी साक्षात्कार क्यों नहीं होते कई पूछते हैं, तो बाबा कहते हैं जरूरत ही नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो ना, अभी साक्षात्कार की क्या जरूरत है, अभी तो एग्जामिनेशन नजदीक है बस। तो कई कहते हैं कि सब तो हमारी दादियां चली गई, अब देखो स्कूल में जाते हैं कॉलेज में जाते हैं, अब पहले तो बहुत पढ़ाई होती है धीरे 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 धीरे, थोड़ी कोई टीचर सारा दिन पढ़ाता रहेगा, वो कहेगा भाई आप लोग करो होमवर्क करो, टीचर ने तो बहुत पढ़ा लिया, अब आप लोगों को अपने आप करना है। आजकल तो सब ऑनलाइन 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 है ना, तो इसीलिए ही भगवान हमें कहते अभी भी है, साथ रहेंगे, साथ ही जाएंगे। ब्रह्मा बाबा हमको छोड़ के नहीं जाएगा, मम्मा छोड़ के नहीं जाएंगे, ये दादियां हमको छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं गई है वो, वतन में मिलती है, संदेशियों से मिलती है, बाकी हाँ उनका अलग पार्ट है बच चल रहा है गुप्त। मम्मा ने जब पहले पहले शरीर छोड़ा 65 में, तो कईयों को बहुत संशय हुआ मम्मा चली गई, बाबा ने तो कहा कि सब साथ रहेंगे, मम्मा चली गई। तब बाबा ने उस समय फिर क्या आउट किया कि मम्मा एडवांस पार्टी की लीडर बनेगी, अभी एडवांस पार्टी शुरू हुई है, तो मम्मा उसकी लीडर, यहाँ भी लीडर थी और एडवांस पार्टी की भी लीडर, आपस में मिलते होंगे, दूसरे जन्म में मिलते होंगे ना, कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई मीटिंग तो करते होंगे, कुछ तो करते होंगे, लेकिन बाबा अभी राज नहीं खोलते। तो इसीलिए वो एडवांस पार्टी की हेड बनी, फिर बाबा अव्यक्त हो गए, यही सोचा बाबा अव्यक्त हो गए संस्था खत्म, लेकिन बाबा ने क्या किया, हाँ बाबा अव्यक्त हुए तो कितने भाई बहने तैयार हो गए, बाबा का नाम बाला करने लिए तैयार हो गए। एक मिसाल हम देते हैं, वो चन्ना रेड्डी थे राजस्थान के गवर्नर, पहले वो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर थे, यूपी के थे, फिर राजस्थान के गवर्नर बने, वो बाबा से मिले अव्यक्त बाप दादा से, तो वो अनुभव सुनाते थे, क्योंकि उस समय जो बाबा से मिलने के लिए 3000 टीचर्स आई थी ओम शांति भवन में बाबा मिले, और जब बाबा उनसे मिले उन्होंने फाउंडेशन भी डाला ज्ञान सरोवर का, उद्घाटन भी उसने किया, तो बाबा ने उनको कहा आपको पता आप कहाँ आए हो, आपका ये परिवार है, ये आप अपने परिवार में आए हो, आपको अपनी भक्ति का फल मिला है। तो बाबा ने उसको कहा पीछे मुड़ के देखो, तो पीछे मुड़ के देखा सब सफेद वस्त्रधारी बहने टीचर्स बहने बैठी थी, सब योग युक्त और देख रही थी। बाबा ने कहा ये सब आपका परिवार है, कैसे कैसे बाबा ने इनको आप समान बनाया है। अब उस समय इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ा क्योंकि वो साईं बाबा का भक्त था, साईं बाबा शिरडी वाला नहीं, वो दूसरा पुट्टपार्टी वाला साईं बाबा का भक्त था। उसका तो अनन्य चेला था, उसको एक डंडा था हाथ में जो साईं बाबा ने उसको दिया था, सदा वो हाथ में पकड़ के रखता था। तो वो साईं बाबा से सदा मिलता था, साईं बाबा को ये कहता था कि आप जैसा आपने कितनों को बनाया है, तो कोई नहीं, साईं बाबा ने अपने जैसा किसी को नहीं बनाया, किसी को भी नहीं। उसमें जो चमत्कार था या जो कुछ भी करता था, हाथ की सफाई कहते थे, पर अपने जैसा तो किसी को नहीं बनाया। अभी जो है उनकी बस संस्थाएं चलती है, हॉस्पिटल चलता है, स्कूल चलता है, बस बाकी तो खत्म खत्म। तो साईं बाबा ने कहा कि ऐसे तो किसी को बना सकते नहीं, लेकिन उसने कहा ब्रह्मा कुमारियों के पास मैं गया, और भले ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, लेकिन उसने कितनों को अपने जैसा बना लिया, कितनों को, और सचमुच कितनों को बना लिया, ये सब ने उठा लिया ना पान का बीड़ा। लोगों ने तो बहुत कहा, अभी देखना ब्रह्मा बाबा गए ना, अभी इनकी संस्था खत्म। जैसे और गुरुओं के वो गुरु चले जाते हैं तो वो सब बढ़ जाते हैं, सब अलग 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 हो जाते हैं, अपने अपने अड्डे बना लेते हैं, वो शक्ति खत्म हो जाती है। और यहाँ हम क्या कहते हैं, पढ़ाई एक है, रोज वही मुरली सब सेंटरों पर जाती है, हमारा टीचर भी एक है, सब एक है, लक्ष्य भी एक है, हम एक है, हमारा एक है, हम सब एक की मत पर चलने वाले हैं, एक राज्य एक धर्म स्थापन कर रहे हैं। तो धर्म और राज्य दोनों स्थापन हो रहा है, और हमारी बाबा मम्मा दादियों की सकाश मिल रही है। कई कहते हैं मधुबन में तो वो रौनक जो दादियां थी अभी तो है नहीं, हम कहते क्यों नहीं है, अब बाबा के कमरे में जाओ, हमको वही अनुभूति होती है, शांति स्तंभ पर बैठो, हिस्ट्री हॉल में बैठो, बाबा की झोपड़ी में बैठो, लगता है बाबा साथ है, लगता है ना कि बाबा चला गया, दादियां चली गई, अभी क्या, ऐसे सोचते हैं क्या, सोचते हैं क्या कोई, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सोच ही गलत है। इसलिए बाबा कहते हैं कि धर्म और राज्य की स्थापना हो रही है, और तीसरी चीज क्या स्थापन बाबा करते हैं, परिवार, अलौकिक परिवार। कितने भाई बहने हैं हमारे, सोचो तो कितने भाई बहने हैं, हर देश में अपना अपना घर है, जो बाबा के सेंटर्स हैं इतने देशों में, सब हमारे घर है ना, हाँ बाबा के घर माना हमारे घर। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को एक विश्व परिवार बना रहे, जहां भी जाते हैं बाबा का ज्ञान वहां सुनाते हैं ना, तो वो कोई ना कोई निकल ही आता है, ब्राह्मण जो ढूंढ रहा था दुनिया के एकदम ठेठ कोने में, कोई ना कोई निकल आता है। तो बताओ बाबा का जो सतयुगी परिवार कहाँ कहाँ बिखर गया है, सारी दुनिया में बिखर गया है, और इसलिए वो बुलाते हैं, मधुबन वालों को बुलाते हैं, हमारी बहनों को बुलाते हैं, विदेश में बहुत बुलाते हैं, 140 देशों में अपनी सेवा केंद्र हैं। अभी भी मोदी जी गए थे ना, अमेरिका गए थे, तो वहाँ भी वॉशिंगटन गए थे, वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, तो वहाँ भारत वालों से मिले थे। तो हमारी कितनी बहनें जो इंडिया से गई हुई है विदेश में, अमेरिका में गई हुई है, वो सब आई थी और मोदी जी से मिले, उनको बहुत खुशी हुई कि ब्रह्मा कुमारियाँ यहाँ भी है। हिंदी में बात की, इसको बहुत खुशी हुई, क्योंकि वॉशिंगटन में भी अपना बहुत सुंदर सेंटर है, बहुत सुंदर सेंटर है, मैं भी दो बार गई हूँ वॉशिंगटन, वहाँ पर अमेरिका गए हैं, और वो बहन सब वीआईपीस की बहुत सेवा करती है वॉशिंगटन में। वो बहन ऐसी है, उसकी माँ काली है निग्रो और बाप इंडियन पंडित, वो पंडित था और एक काली से शादी किया और ये एक बच्ची पैदा हुई, अब ये न काली है न एकदम इंडियन है उस प्रकार से है। तो संस्कार पूरे इंडियन है और माँ काली है, वो निग्रो है ना, ये अफ्रीकन होते हैं ना वो है, पर हिंदी बोलती है, सीख गई है, माँ को नहीं आता कुछ भी। लेकिन बाप इसका पंडित था, सरनेम ही पंडित है, तो इसीलिए जैसे बाबा से इतना प्यार, हर साल आती है अमेरिका से, इतना सुंदर सेंटर बनाया वॉशिंगटन में। वहाँ पर दादी प्रकाशमणि जब गई थी तो उन्होंने एक पौधा लगाया था दादी जी ने, तो वो पौधा के पास जाती है बिल्कुल जो कैपिटल हिल है जहाँ उनका पार्लियामेंट चलता है राष्ट्रपति का, वहाँ ही उनके सामने ही है वो पौधा, और वहाँ जाती रहती है। आपको भी लेके गई थी और बिल्कुल वहाँ कैपिटल हिल जहाँ राष्ट्रपति और वो सब मिनिस्टर्स वो सब आते हैं, और उनकी सेवा भी उसने की है। तो कहने का भाव है कि फिर बाबा ये भी कहते व्हाइट हाउस जो वहाँ राष्ट्रपति का घर है व्हाइट हाउस ना, तो वो भी बहुत नज़दीक है, वहाँ भी हम दूर से देखा था, बहुत अच्छा है। परंतु बाबा का वहाँ सुंदर सेंटर है, तो देश क्या विदेश क्या हमारे कितने घर है, हम भी देखो कम से कम 75 देशों में कई बार गए होंगे, हर साल जाते हैं। अभी कोरोना के कारण हम नहीं जा सके, लेकिन 2019 में भी हम गए थे, साउथ अफ्रीका गए, श्रीलंका गए, अभी फिर जा रही हूँ। आप क्योंकि कई बहनें कहती हैं बहन जी आप कहाँ थे, ना मत मुरली क्लास में देखा ना आपको देखा, आप कहाँ थे, तो मैं दिल्ली गई थी दो दिन, एक दिन के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करने, तो यूरोप का टूर है अगस्त में, तो वहाँ भी अपने बहुत सुंदर रिट्रीट सेंटर है, स्पेन में रिट्रीट सेंटर है, अभी नया सेंटर का उद्घाटन करना है मैड्रिड जो राजधानी है स्पेन की, पोर्चुगल में भी रिट्रीट सेंटर बनाया है, वहाँ भी नए भवन बन रहे हैं, वहाँ भी उद्घाटन करना है, रिट्रीट रखी है। फिर जर्मनी में इतना बड़ा रिट्रीट सेंटर है अपना, तो वहाँ भी जाएंगे, तो सब जगह रिट्रीट रखी है, प्रोग्राम रखे हैं, तो सब करने, इसीलिए वीज़ा के लिए गई थी, एक दिन के लिए गई बस, फ्लाइट में गई, अगले दिन इंटरव्यू था, उसी दिन शाम को वापस आ गई, उदयपुर में रुकी और अगले दिन आ गई, कल आ गई ऐसे, क्योंकि कहाँ टाइम है, यहाँ भट्टियाँ चलती रहती है। तो आप सबके कारण मैं फिर हाँ कल ही पहुँच गई, ताकि मैंने कहा 1 तारीख को क्लास कराऊँ। तो चलिए अभी हम एकदम पावरफुल योग करेंगे, सीधा बैठेंगे। हम रमेश बहन को भी याद कर रहे हैं, मुझे याद है पिछले साल यहाँ बैठी हुई थी, रमेश बहन भी थी, तो उस समय हमारे से मिली जब ना बहुत श्रृंगार किया, बहुत कुछ किया, तो फिर हमने कहा, तो उसने कहा एक वायदा आपको करना है, आपको हिसार आना है। मैंने कहा आएंगे ना, ज़रूर आएंगे, लेकिन कोई प्रोग्राम बनाना। तो रमेश बहन को भी हमारी बहुत बहुत याद देना, टीचर्स बहने जी, आज नीचे आई होगी टीचर्स वो भट्टी में, और ये जो कल जो मीटिंग के लिए आई है, और ये भी तो होगा ना, क्या नाम, जो कन्याओं का समर्पण, आपके वहाँ से कोई कन्या नहीं, अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ 1 तारीख से, आज से ही मीटिंग है ना, आज शाम से मीटिंग है, लेकिन फिर कल वैसे हम भी मीटिंग में जाते, लेकिन कल जो है वो हमको भीनमाल जाना है, भीनमाल यहाँ राजस्थान में ही है, तो वहाँ 4 कुमारियों का कल समर्पण हुआ था, तो वहाँ तो जितनी भी कुमारियाँ थी उनके लिए कहा था 10-10 रिश्तेदारों को ले आए, बस 10 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि 450 थे, तो अगर एक एक कुमारी के भी 10-10 रिश्तेदार आए तो कितने हो जाए, तो 15,000 सब बराती आ गए थे, 15,000, सारा डायमंड हॉल फुल था, तो लेकिन उनकी रिश्तेदार तो बहुत होंगे, तो चार कुमारियां भीम माल की, वहाँ गीता बहन रहती है, वो अपने यहाँ कल प्रोग्राम रखा है ये रिसेप्शन जैसा, अब मेरे के पास आइए आपको आना है, तो इसलिए कल सुबह सुबह 6:30 बजे हम निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेशन है, फिर यहाँ से 3 घंटा है माउंट से, तो सुबह हम निकल जाएंगे और वहाँ भीनमाल जाना है, फिर दोपहर का ब्रह्मा भोजन वगैरह करके या तो रुक जाएंगे, दूसरे दिन आएंगे, या कल ही रात तक वापस आएंगे, तो ऐसे जाना है। तो चार बहनों का वो रिसेप्शन कहते हैं शादी के बाद तो वो रखा है, तो उनके सारे रिश्तेदार आएंगे तो उनकी भी सेवा हो जाएगी। चलो अभी हम सब बाबा की याद में ऐसे बैठे, बस उड़ चले वतन में, याद रखे मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, अपने स्वमान का नशा चढ़ाए, देह और देह की दुनिया से बिल्कुल उपराम, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, सर्व संबंध एक शिव बाबा से, मात पिता बंधु सखा स्वामी साजन सब एक, कोई सत्यम शिवम सुंदरम, एक बल एक भरोसा, मुझे संपन्न बन बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, बंधन समाप्त कर घर जाना है। बाबा आए हैं सबको मुक्त कर वापस घर ले जाने। मैं आत्मा अति शुद्ध और पावन हूँ। सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। अत्यंत हल्की हूँ। सबसे न्यारी हूँ। डबल लाइट हूँ। दिव्य ज्योति प्रकाश पुंज हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अति पवित्र हूँ। यही शुद्ध नशा आत्मा में रहे। ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। शिव बाबा के सानिध्य में उनकी छत्र छाया में एकदम सुरक्षित हूँ। माया जीत हो मेरा मन एकदम शांत है। निर्संकल्प है।
दीदी के सानिध्य में बैठकर नुमा श्याम का अभ्यास किया, निश्चय नशा और निशाना को साधा, एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।